तारीख 5 जून दिन बुधवार, कार्यक्रम है नमस्कार भारत। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ अभूतपूर्व व्यापार सौदे का किया वादा, कहा कि अमरीका व ब्रिटेन का गठबंधन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन।
The United Kingdom is America's largest foreign investor in our largest European export market.
रिटायर्ड सैनिक सनाउल्लाह के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ केस।
हमारा नाम है, हमारा बाबा जी का नाम है, हमारा घर का नंबर है, ये से कहां मिला उसको।
क्या नीतीश कुमार करेंगे बिहार के महागठबंधन में वापसी? कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन ब्रिटेन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने उन खबरों को फेक न्यूज बताया जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ट्रंप ने कहा कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के व्यापार में 3 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा कि पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस पर भी बातचीत हो। हालांकि बाद में उन्होंने ITV को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो हेल्थ सर्विस को व्यापार के हिस्से के तौर पर नहीं देखते। वहीं उधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी पर्यटकों की क्यूबा यात्रा पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा साम्यवादी द्वीप की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। 4 साल पहले दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के मकसद से एक लोकप्रिय एक्सचेंज योजना शुरू की गई थी जिससे क्यूबा में अमरीकी पर्यटन को बढ़ावा मिला, लेकिन अब अमरीका के न्याय विभाग ने इस योजना पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नए प्रतिबंधों के तहत अमरीकी नागरिकों को क्रूज जहाजों से क्यूबा जाने की इजाजत नहीं होगी। अमेरिका अपने इस कदम से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का समर्थन करने वाली क्यूबा की साम्यवादी सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना में रहने वाले लोगों ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से नुकसान होगा, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे। फूल बेचने वाली एक महिला ने कहा, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि ये सारी समस्याएं हमारे लिए भी समस्याएं खड़ी कर रही हैं। इसे अर्थव्यवस्था के साथ साथ जहनी तौर पर भी असर हम पर पड़ रहा है, लेकिन हम थकेंगे नहीं, हम यहाँ लड़ना जारी रखेंगे। ये थे हवाना में फूल बेचने वाली एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीका के राष्ट्रपति ने मैक्सिको से अमरीका में हो रहे प्रवासन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लाखों लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों का आना ऐसे ही जारी रहा तो अगले हफ्ते मैक्सिको पर लगाए जा रहे 5% आयात शुल्क को हर महीने 5% और बढ़ाया जाएगा। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका और मैक्सिको के बीच की व्यापार बातचीत सफल होगी और वो इस मसले को लेकर राष्ट्रपति के सामने इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने कहा,
Hace falta, lo haríamos, pero primero,
जरूरत पड़ने पर हम ये करेंगे, लेकिन पहले कल की बैठकें होनी है। हमारी समिति बहुत बढ़िया है, मैं अपनी बात पर बना रहूंगा। मेरा मानना है कि समझौता होगा, मुझे उम्मीद है। ये थे मैक्सिको के राष्ट्रपति के शब्द। सूडान की राजधानी खार्तूम में आम नागरिकों से कथित मारपीट और हिरासत में लिए जाने के बाद भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लोकतंत्र के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन में शामिल लोगों पर गोलीबारी हुई थी जिसमें 30 से ज्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। विश्व बैंक ने इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कम रहने की चेतावनी दी है। बैंक के मुताबिक इस साल ये वृद्धि दर 2.6% रहेगी, जो कि 2018 के 3% से कम है। एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने BBC से कहा कि ये कमजोरी व्यापक है। इसकी एक वजह चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को भी माना जा रहा है। ये डर भी जताया जा रहा है कि वृद्धि दर 2020 में रफ्तार पकड़ने में नाकाम रह सकती है, लेकिन विश्व बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि वैश्विक मंदी आने की संभावना कम है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने सुना, ब्रिटेन के दौरे पर आए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ब्रिटेन का गठबंधन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद अभूतपूर्व व्यापार सौदे का वादा किया, लेकिन कहा कि सब कुछ टेबल पर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना यानी NHS सहित। उन्होंने कहा,
The United Kingdom is America's largest foreign investor.
ट्रंप कह रहे थे, ब्रिटेन अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक तो है ही, साथ ही निर्यात के लिए सबसे बड़ा यूरोपीय बाजार भी है। अब जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इस व्यापार समझौते में बड़ी संभावनाएं हैं, ये 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। NHS को व्यापार समझौते में शामिल किए जाने पर विवाद हुआ और बढ़ते विवाद को देखते हुए बाद में ट्रंप ने सफाई दी, कहा कि NHS को वो इसमें शामिल नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि मैं इसे टेबल पर नहीं देखता। किसी ने आज मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि व्यापार बातचीत में सब कुछ शामिल है, लेकिन मैं NHS को ट्रेड में शामिल नहीं करता हूँ, ये व्यापार नहीं है। ट्रंप ने जेरमी कॉर्बिन के साथ बैठक को रद्द किया, जिन्होंने वेस्टमिंस्टर में प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। और जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की लंदन में बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेरेसा मे को प्रॉमिस किया कि जैसे ही यूके ईयू से निकलता है, तब यूएस यूके के साथ एक फिनोमिनल ट्रेड डील साइन करेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि इस डील के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, इंक्लूडिंग नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि यूके का NHS सर्विस है। और इसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी यूके में क्रिएट हुआ, क्योंकि लोग शॉक थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने NHS को कैसे इंक्लूड किया, क्योंकि NHS हमेशा से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है यूके का। और शैडो हेल्थ सेक्रेटरी यूके के ने क्रिटिसाइज किया और बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ही विल मेक श्योर कि NHS कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, और अगर हमने यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील डिस्कस किया तो वो मेक श्योर करेगा कि ये NHS ट्रेड डील का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा टेरेसा मे ने ये बोला कि दोनों देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक ट्रेड डील सक्सेसफुल हुआ, तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्रीज हर एक एस्पेक्ट को अग्री करे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ट्रेड डील फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा ये भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उन्होंने लेबर लीडर जेरमी कॉर्बिन के मीटिंग इनविटेशन को रेफ्यूज किया। ट्रंप ने जेरमी कॉर्बिन को नेगेटिव बोला और उनकी मैं नेगेटिव लोगों के साथ मिलता नहीं, और मुझे जेरमी कॉर्बिन एक नेगेटिव इंसान लगते हैं।
गगन, ये बताएं कि टेरेसा मे के साथ उनकी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही थी, टेरेसा मे के लिए उन्होंने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप और टेरेसा मे दो अलग पर्सनालिटीज है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आपको पता है, उनके मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं, लेकिन टेरेसा मे बहुत ही डिप्लोमैटिक, बहुत ही शांत किस्म की इंसान है। तो जब भी ये मिलते थे कुछ ना कुछ अनबन होती थी, लेकिन इस बार हमें लगा ऐसा शायद फिर से होगा, क्योंकि ये मिसेज मे का लास्ट मीटिंग था डोनाल्ड ट्रंप के साथ एज यूके प्राइम मिनिस्टर। तो उनका व्यवहार टेरेसा मे के टुवर्ड्स बहुत ही अलग था। उन्होंने उनकी तारीफ की, उनको प्रेस किया और ये भी बोला कि एक वेरी गुड जॉब किया है ब्रेग्जिट निगोशिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने ये भी जोक मारा कि वो शायद उनसे बहुत ही अच्छी निगोशिएटर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि बोरिस जॉनसन वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर फॉरेन सेक्रेटरी जेरमी हंट प्राइम मिनिस्टर बनते वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा यूके के लिए।
ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ अभूतपूर्व व्यापार सौदे का वादा किया। ये थी बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड,
यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारतीय सेना को 30 साल सेवा देने वाले रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह करीब एक हफ्ते से असम के एक डिटेंशन सेंटर में हैं। उन्हें 23 मई को फॉरनर्स ट्राइब्यूनल अदालत ने विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। अब सनाउल्लाह मामले की जांच अधिकारी चंद्रमल दास के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिन कथित गवाहों के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई, उनका कहना है कि उन्होंने कभी गवाही दी ही नहीं। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
साल 2017 में सेना से रिटायर होने वाले 52 वर्ष के मोहम्मद सनाउल्लाह असम पुलिस की बॉर्डर विंग में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। जोधपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, पंजाब और मणिपुर जैसी जगहों पर अपनी सेवाएं देने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम पिछले साल जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC की पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं था, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया और मामला फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पहुंचा। हाल ही में उन्हें गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों से असम में गैर कानूनी आप्रवासन एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। राज्य में मार्च 1971 से पहले से रह रहे लोगों को रजिस्टर में जगह मिली है, जबकि उसके बाद आए लोगों के नागरिकता के दावे को संदिग्ध माना गया है। असम में रह रहे करीब 40 लाख लोगों का नाम NRC की पहली सूची से गायब था, जिसके बाद उन्हें और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया। इस बीच जिस पुलिस अधिकारी चंद्रमल दास की जांच रिपोर्ट के आधार पर मोहम्मद सनाउल्लाह को डिटेंशन सेंटर भेजा गया, पुलिस ने उसी अफसर के खिलाफ FIR दर्ज की है। मोहम्मद सनाउल्लाह के खिलाफ 2008-2009 का मामला 3 कथित गवाहों और मोहम्मद सनाउल्लाह के कथित इकबालिया बयान पर आधारित है। ये तीनों कथित गवाह सनाउल्लाह के गांव के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने 10 साल पुरानी जांच रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर कहा कि उन्हें पता नहीं है कि सनाउल्लाह कहां के रहने वाले हैं। अब इन्हीं तीनों यानी कुर्बान अली, सुबहान अली और अमजद अली का कहना है कि उन्होंने मामले के जांच अधिकारी चंद्रमल दास से कभी बात ही नहीं की। असम के कामरूप जिले के अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक हेडक्वार्टर संजीव कुमार सैकिया कहते हैं,
These three persons have lost FIR, alleging that the IO of that particular case, Chandramal Das, misused their names.
संजीव कुमार सैकिया कह रहे थे, तीन लोगों ने FIR में आरोप लगाया है कि मामले के जांच अधिकारी चंद्रमल दास ने उनके नामों का दुरुपयोग किया, उनके नकली हस्ताक्षर किए। हमें उन गवाहों के हस्ताक्षरों को क्रॉस चेक करना होगा, उन्हें जांच लैब में भेजना होगा, दूसरे साक्ष्यों के भी स्टेटमेंट लेने होंगे, उसके बाद ही असलियत का पता चलेगा। चंद्रमल दास पिछले साल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 23 मई के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल अदालत के फैसले के बाद समाचार चैनल NDTV से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की उन्होंने जांच की वो सनाउल्लाह थे, न कि मोहम्मद सनाउल्लाह, इसलिए ये प्रशासनिक भूल चूक का मामला है। असमिया भाषा में लिखे 2008-2009 के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक कलाहीकाश गांव के रहने वाले कुरान अली, सुबहान अली और अमजद अली ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें पता नहीं कि मोहम्मद सनाउल्लाह कहां के रहने वाले हैं। अमजद अली ने कथित तौर पर कहा कि मोहम्मद सनाउल्लाह हमारे इलाके के नहीं है, इसलिए इनकी नागरिकता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुरान अली ने कथित तौर पर कहा, सनाउल्लाह हमारे गांव के स्थानीय निवासी नहीं है। सुबहान अली ने भी कथित तौर पर लगभग यही कहा, लेकिन अब इन तीनों का कहना है कि उन्होंने जांच अधिकारी चंद्रमल दास से कभी बात ही नहीं की। BBC से बातचीत में 65 साल के कुरान अली ने कहा,
वो सब बयान हमने दिया है, वो अपना खुशी से लिखा है क्या चंद्रमल दास।
अच्छा, तो ऐसा कैसे हो गया कि आप कभी मिले नहीं हैं और आपके नाम पर लोग ऐसे ऐसे बयान लिख रहे हैं?
उसका साथ कोई हाई नहीं किया है, उसका ही मालूम है, उसके पकड़ने से पता चलेगा वो कहाँ से लाया है सब बात। हम तो था गुवाहाटी में, उसका साथ मेरा मुलाकात भी नहीं हुआ है, हम कैसे बोलेगा वो कहाँ से सब लाया है। हमारा नाम है, हमारा बाबा जी का नाम है, हमारा घर का नंबर है, वो इसे कहाँ मिला उसको।
आधिकारिक दस्तावेजों में मोहम्मद सनाउल्लाह का कथित इकबालिया बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जन्म ढाका के कासिमपुर गांव में हुआ। मोहम्मद सनाउल्लाह के परिवार के मुताबिक उन्होंने कभी एक कथित इकबालिया बयान दिया ही नहीं। उनकी बेटी शहनाज अख्तर के मुताबिक पिछले साल 2018 में उनके पिता को जब पता चला कि उनका NRC की पहली ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है, तो वो NRC केंद्र गए और तब उन्हें अपने ऊपर चल रही 10 साल पुरानी जांच के बारे में पता चला।
उनको पता ही नहीं चला था, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन भी आता है लेकिन उनको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था। एनआरसी में नाम नहीं था इसलिए वो खुद एनआरसी केंद्र में जाके फाइंड आउट किया है कि किस लिए उनका नाम नहीं है। तो बाद में पता चला उनके ऊपर वो डाउटफुल वोटर आया है, फिर उन्होंने केस पेस मतलब पुलिस ने केस किया था इसके ऊपर, फिर तभी पता चला 2018 में।
मोहम्मद सनाउल्ला के वकील मामले को गुवाहाटी हाई कोर्ट ले गए हैं और सुनवाई 7 जून को है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
एनडीए के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच करीब एक हफ्ते से जारी खींचतान कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक विवादित ट्वीट के बाद जुबानी जंग में बदल गई। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में क्या कहा और इस पर क्या रही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया और इसका जनता दल यूनाइटेड भाजपा संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सांकेतिक भागीदारी से पहले नीतीश कुमार ने इनकार किया और इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा को ऐसा ही प्रस्ताव दिया तो इससे भाजपा ने इनकार कर दिया। इन घटनाक्रमों से बीते महीने 30 मई को भाजपा और जदयू के बीच खींचतान शुरू हुई थी और कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक ट्वीट के बाद यह खींचतान जुबानी जंग में बदल गई। गिरिराज सिंह ने रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अन्य नेताओं की तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पे फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। उन्होंने आगे लिखा कि अपने कर्म धर्म से हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावा में आगे रहते हैं। जदयू के कई नेताओं, प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने इस ट्वीट के लिए गिरिराज सिंह की जमकर आलोचना की और उन्हें आईना दिखाया। पार्टी की ओर से गिरिराज सिंह पर कार्रवाई तक की मांग की गई। नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में तंज कसा। कल शाम होते होते ये खबरें आने लगी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को ऐसे विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी है। इसके पहले गिरिराज सिंह के ट्वीट के बहाने बिहार में एनडीए के भविष्य पर फिर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में गिरिराज से जुड़े सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने न केवल उन पर तंज कसा बल्कि दोहराया कि बिहार में एनडीए अटूट है।
किसी को भ्रम ना रहे कि जो एनडीए गठबंधन है पूरा एकजुट है, बीजेपी जेडीयू सारे लोग एक साथ हैं। मैं देख रहा था कि कुछ टीवी चैनल दिखा रहे हैं कल के इफ्तार के बारे में। मैं तो 8 घंटा कल मुख्यमंत्री जी के साथ था, परसों भी 3 घंटा साथ में था, आज भी मैं 4 घंटा साथ में था। इसीलिए कोई भ्रम में ना रहे, जो एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूत है।
नीतीश कुमार के हालिया रुख के साथ साथ बिहार एनडीए के भविष्य पर एक बार फिर से चर्चा इस कारण भी हो रही है क्योंकि विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। जैसे कि सोमवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इसका फैसला महागठबंधन मिलकर करेगा। वरिष्ठ पत्रकार सूर अहमद का मानना है कि ये सारी सियासत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है।
पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है मामला वो बजाहिर एक नोरा कुश्ती ही लग रही है और नीतीश कुमार को ये बात का एहसास है कि बीजेपी काफी स्ट्रांग हो गई है। राबड़ी देवी का जो ऑफर आया है तो वो साथ साथ बीजेपी को भी आना दिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ मैंने ऑपोजिशन का जो ऑफर आया है उसको भी एक तरह से अभी उस पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया लेकिन एक मतलब की ठीक है कि अपना एक पोजिशन बार्गेनिंग पोजिशन स्ट्रांग कर रहे हैं। ये सब तैयारी असेंबली इलेक्शन से जो कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में है सिलसिला हो सकता है।
गिरिराज सिंह की छवि पहले से ही विवादास्पद बयानबाजी करने वाले नेता की रही है लेकिन उनके लिए भी नीतीश कुमार ने आम चुनाव के दौरान जनता से समर्थन मांगा था। कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है ना दुश्मन। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में कई सियासी रंग देखने को मिल सकते हैं। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
तो राजनीति में कोई, सियासत में कोई स्थानीय स्थाई दोस्त नहीं होता और कोई स्थाई दुश्मन भी नहीं होता। आज के अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी भी यही कह रही है गुरप्रीत। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की राह जुदा।
जी आज भी अखबारों में यही खबर सुर्खी बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन असफल, बसपा सपा ने कहा कि वो राज्य के उपचुनाव में अलग अलग लड़ेगी। वहीं मायावती ने कहा कि भविष्य में गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं और गठबंधन स्थायी रूप से नहीं टूटा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है कि अभी के लिए बसपा और सपा का साथ खत्म, और जनसत्ता ने लिखा है कि सपा बसपा की राह जुदा, मायावती ने कहा राजनीतिक मजबूरी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वहीं लिखा है कि अखिलेश ने माया से कहा गुड बाय गुड लक। वहीं एनबीटी ने एक दिलचस्प हेडलाइन लगाई है कि महाकटबंधन।
अब महाकटबंधन, गठबंधन को महाकटबंधन, और यहीं पर अपने हम श्रोताओं को बता दें कि bbchindi.com के पेज पर अगर आप आएंगे तो इस समय हमारी भी लीड खबर यही है और जिसकी हेडलाइन है अखिलेश को नौसिखिया क्यों समझती है मायावती, और ये वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का आर्टिकल है।
जी इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा ही दिलचस्प कार्टून जो अभी आप देख रहे थे वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे?
बहुत ही सुंदर प्यारा सा कार्टून है, उन्नी का कार्टून है और इसमें दाएं बाएं दो दो चेहरे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का जिक्र है जिसमें कि मायावती और अखिलेश एक दूसरे के उलट देख रहे हैं, और दूसरी ओर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट उलट एक दूसरे के देख रहे हैं।
जी इंडियन एक्सप्रेस में ही यही राजस्थान से जुड़ी खबर कह रही है कि पायलट को भी मेरे बेटे की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उनका कहना है कि जोधपुर सीट पर पार्टी की हार की जिम्मेदारी पायलट लें क्योंकि वो शानदार जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में परिसीमन की सरकार की योजना, ये खबर जनसत्ता अखबार में दिख रही है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन की तैयारी कर रही है। अखबार कहता है कि परिसीमन आयोग के गठन की तैयारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं लेकिन 24 सीटों को खाली रखा गया है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए, बाकी की बची 87 सीटों पर चुनाव होते हैं। और इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेगा।
यहीं पर एक खबर का जिक्र जरूरी है कि 3 अलगाववादी 10 दिनों की हिरासत में लिए गए हैं, और ये मामला है मुंबई चरमपंथी हमले समेत अन्य देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के एक नए मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी 10 दिनों तक पूछताछ करेगी और मंगलवार को इन तीनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करके दिल्ली के विशेष अदालत में पेश किया गया था।
जी और हिंदुस्तान टाइम्स में सबसे आगे मुझे खबर दिख रही है जिसकी हेडलाइन है कि वर्ल्ड कप आखिरकार आज शुरू हो गया भारत के लिए।
आज शुरू हो गया और कार्यक्रम में इसका हम जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा, नमस्कार भारत। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मोदी मंत्रिमंडल के जिन 57 सहयोगियों को शपथ दिलाई गई थी उनमें से एक नाम रामेश्वर तेली का भी था। असम की चाय जनजाति समुदाय से आने वाले रामेश्वर 2 बार विधायक और लगातार 2 बार सांसद चुने गए, लेकिन आज भी वो आम आदमी की तरह बांस और टिन के बने कच्चे घर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। खेतों में ठेला चलाने से लेकर चाय की गुमटी के सामने पान सुपारी का डाला लगा चुके रामेश्वर तेली मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बने हैं। सुनिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
30 मई की शाम जैसे ही डिब्रूगढ़ के सांसद रामेश्वर तेली ने कैबिनेट राज्य मंत्री की शपथ ली उनका नाम अचानक राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में आ गया। रामेश्वर तेली 2 बार विधायक और लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन उन्हें इससे पहले सरकार या पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। 12 जुलाई 1999 को भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले तेली की सादगी हमेशा चर्चा में रही। एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले तेली का बचपन आर्थिक तंगियों से गुजरा था, लिहाजा रामेश्वर तेली ने चाय जनजाति समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट यूनियन से बतौर छात्र नेता अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू किया, क्योंकि तेली जिस विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उन सीटों पर चाय जनजाति के मतदाताओं के वोट निर्णायक होते हैं। साल 2011 में एक बार किसी घटना पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब मैंने रामेश्वर तेली को फोन कर पूछा कि वो चुनाव हारने के बाद क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा था कि वो खेतों में ठेला चलाते हैं। छत्तीसगढ़ से बरसों पहले असम के चाय बागानों में मजदूरी करने आए रामेश्वर तेली के परिवार में उनके कई चाचा आज भी ठेला चलाकर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करके और अखबार बेचकर अपना गुजारा करते हैं। रामेश्वर तेली के छोटे भाई भुवनेश्वर तेली उन दिनों को आज भी भुला नहीं पाए हैं।
हमारा मम्मी लोग कर रहा था चाय बागान में काम, छोटे में हम लोग सब कुछ किए हैं, सब्जी बिक्री करते थे, पान दुकान में चाय होटल के आगे में पान डाला लगाते थे। फायदा मतलब यही है, परिवार के लेके साथ में हम लोग रहा, उनका लेके आज हम लोग सब कोई पहचानता है, यही हम लोग के सबसे गौरव की बात है।
अपने मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालने से पहले माँ से फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए रामेश्वर तेली थोड़े भावुक हो गए।
देखिए मेरा माँ साधारण है, उनको ये सब के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे बेटा जो करता है वो अच्छा करता है।
रामेश्वर तेली की सादगी की जितनी चर्चा होती है उतनी चर्चा उनके काम की नहीं होती। डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजीव दत्ता कहते हैं,
वो अपने पर्सनल जीवन में जितना सिंपल है, किंतु आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिटिकली उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2014 में जो एमपी चुने गए थे और जो एमपी के जो फंड आते थे वो उसका फुल्ली यूटिलाइज भी नहीं कर पाए, अराउंड 8 to 10 crores का यूटिलाइज नहीं कर पाए, और ये एक उसका बड़ा सा ड्रॉबैक है।
डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों से दूरी बनाए रखने के आरोपों का जवाब देते हुए रामेश्वर तेली ने बीबीसी से कहा,
आप सबसे ज्यादा अगर हम लोग उजाला योजना देखिएगा तो हमारे मुस्लिम बहनें हैं जितना मिला है, हम तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग की कैसे इंडस्ट्री लगाई जाए, हमारे 100 डेज का एक प्रोग्राम होगा, अभी 1,140 करोड़ रुपया शायद हम लोग 100 डेज में खर्चा करना होगा।
असम से तेली को एकमात्र मंत्री बनाए जाने से जहां लोग अलग अलग मंचों पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तेली अपनी पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले नए नारे पर काम करते हुए बतौर मंत्री अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और अब खेल समाचारों की बात करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 7वें मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 34 रनों से हरा दिया है। नुमान प्रदीप और लसित मलिंगा की घातक गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल कर ली है। बारिश के चलते खेल को बीच में रोकना पड़ा था और बारिश रुकने के बाद मैच को 41 ओवर का कर दिया गया था। और अब आज क्या होगी, किस पे किस खबर पर होगी हमारी नजर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इंग्लैंड के मैदान पर, जहां पर भारत के फैंस के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबला होगा और विश्व कप का ये मुकाबला दोपहर को 3 बजे शुरू होगा। तो वहीं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत होगी और ये मुकाबला आप शाम के 6 बजे भारतीय समय के अनुसार देख पाएंगे। बात अगर दक्षिण अफ्रीका और भारत के मैच की करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम मुसीबत में दिखाई दे रही है, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज डेल स्टेन इस विश्व कप से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्यूरेन हैंड्रिक्स को उनकी जगह लाया गया है। तो वहीं हाशिम अमला और लुंगी निगीडी की फिटनेस पर भी संशय है। दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड जबकि दूसरे में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त मिली थी, तो ऐसे में ये नुकसान काफी भारी साबित हो सकता है। करीब 2 साल पहले डेल स्टेन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कंधे में तकलीफ हुई थी, इसके बाद वे करीब 2 साल से काफी कम क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल 2019 में भी वे ज्यादा नहीं खेल पाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद स्टेन ने छोटे रन अप से गेंदबाजी का कुछ अभ्यास जरूर किया था, लेकिन वो कभी भी लय में नजर नहीं आए। और बाद में साउथ अफ्रीकी बोर्ड ने एक बयान में साफ कर दिया कि डेल स्टेन वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए हैं। तो इंग्लैंड के ग्राउंड पर आपको बल्ले और गेंद घूमती नजर आएंगी, तो वहीं फ्रेंच ओपन में किसका रैकेट आज कमाल दिखाएगा ये आपको पता चलेगा जब आज मेन सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में डोमिनिक थीम उतरेंगे रूस के खिलाड़ी कैरेन खचनोव के खिलाफ, तो वहीं नोवाक जोकोविच का मुकाबला होगा जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के साथ।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन ब्रिटेन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। ट्रंप ने कहा कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के व्यापार में 3 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं उधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी पर्यटकों की क्यूबा यात्रा पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा साम्यवादी द्वीप की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मैक्सिको से अमेरिका में हो रहे प्रवासन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लाखों लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों का आना ऐसे ही जारी रहा तो अगले हफ्ते मैक्सिको पर लगाए जा रहे 5% आयात शुल्क को हर महीने 5% और बढ़ाया जाएगा। सूडान की राजधानी खार्तूम में आम नागरिकों से कथित मारपीट और हिरासत में लिए जाने के बाद भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।